And if you will chant that you are doing it, so mercy will not manifest.
So we say it the same way and then pray.
Same way that Jasomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjanaka. Or any prayer of Narottam Thakur or Bhaktivinoda Thakur, we sing the same thing by not changing nothing in life.
And then pray to make my heart the same as his heart.
Because Krishna will hear their prayer, not our prayer, because we are not Saranagar. Bhaktivinoda Thakur has written in his verse that Saranga Saranagati Haive Jahar Tahar Prathana Suneti Nanda Kumar. Those who are actually surrendered.
ये सबको छोड़ करके हम लोग वो ज्ञान शून्य भक्ति और ज्ञान शून्य के भक्ति में प्रेम निष्ठा भक्ति, इसके बाद में वही भक्ति श्री रागानुगा भक्ति और उससे फिर दास के प्रेम में आए, शांत को छोड़ दिया, शांत को छोड़ दिया, क्योंकि इस रस में जिसकी उपयोगिता अधिक नहीं है, विशेष करके राधानुगा चैतन्य से चांद्रिक असल में राधानुगा शक्ति है। राधानुगा को पाने के लिए ही वैधि शक्ति का प्रथम आश्रय दिया, किंतु वैधि शक्ति का ग्रंथ ये नहीं। वो वैधि शक्ति भी पालन करने से, जैसा कि चैतन्य से चांद्रिक में वर्णन किया गया है, वो राधानुगा को दिलाई, ऐसी ये भक्ति। और शास्त्रों में जो वैधि भक्ति का जो देखा जाता है वर्ण, उसके द्वारा जैसे विष्णु पुराण वो राधानुगा में नहीं परिवर्तित हो किसी भी स्थिति में, किंतु चैतन्य से चांद्रिक में जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, उस तरह से साधन भजन करने से वो प्यार में किसी का है नहीं, नौतम ठाकुर का स्वाधीनता आरोप न जाने
राग
जाने तो राग मार्ग में ये प्रवेश कराएगी भक्ति। इसमें चैतन्य चेतानुक की वैधि भक्ति ये उस तरह की वैधि भक्ति नहीं है। इसको इस प्रकार से कौशल से वर्णन किया है जो करते 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 धीरे 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 वैष्णव का संग होते हो तो ये लोभ उत्पन्न करा दे प्रथम से ही, और अंत तक इसकी ये विशेषता है। वैधि भक्ति से तो आरंभ किया और अंत में इसको रूपांतरित कर दिया। तो इस तरह से करते करते अभी हम लोग मध्यवर्ष में हम लोग इसमें उन्होंने बताया, पहले कल हमने बताया कि सखी मित्र सखी प्राण सखी प्रिय सखी प्रिय नर सखी, फिर इसके बाद में बताया साधारण साधारणी रसी समंजसा रसी
समर्था
और समर्था। साधारणी रसी का है जहां उसकी लिप्सा समाप्त हो गई उसकी रति भी धीरे धीरे समाप्त लुप्त हो जाए, इसलिए इसमें स्थायी भाव नहीं है और गाढ़ता नहीं है, ममत्व भी नहीं है, हो जाए माने वो भाव जो है वो स्थायी नहीं है। कुछ समय के लिए रति उत्पन्न हुई स्थायी जैसी है, स्थायी अभाव जैसी हुई, और फिर वो उसके भोग कामना के साथ ही साथ में वो रति भी अंतर्भित हुई, स्थायी भाव नहीं रहता। स्थायी भाव मैंने ये नहीं कहा, स्थायी भाव मैंने वो स्थायी नहीं रहता, तीर नहीं रहती। कुछ देर के बाद में जो भूख लगी, हमको भूख लगी है ना, भोजन मिल गया, फिर भूख की और कोई चीज की जरूरत होती है चल दिया, जब फिर भूख लगी तो फिर ऐसा, ऐसे ही भोग किया भूख जब लगी तो वो हुआ, आज जब वो भूख समाप्त हो गई किसी भी कारण से तो वो रति भी वहां पर अच्छा नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बस कृष्ण से मिलन में दो बार पूजा का नाम आया, इसके बाद में और कहीं नहीं। और स्वार्थ प्रेरित है, भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, इसलिए इसको वहां से साधार। इसमें रति भी गाड़ी है, रति ये गाड़ी है और स्थाई भी है, प्रगाढ़ भी है स्थाई भी है, किंतु मर्यादा के द्वारा बढ़ी हुई है, इसलिए प्रगाढ़ नहीं हो पाती है, दोनों एकदम फन नहीं हो जाती, इसलिए इसलिए समंजसा है, इसके द्वारा वशीभूत कृष्ण नहीं है। इसमें कभी कभी अपना स्वार्थ भी रहता है और यह तरह तरह के भाव में विभक्त रहती है। इसमें जो रति होती है वो दूसरे दूसरे लोगों में विभक्त हो जाती है, जैसे सप्तम रुक्मिणी जी का रुक्मिणी की रति है कृष्ण के प्रति, किंतु पुत्र के प्रति भी तो बात्सल्य है। कौन पुत्र है? प्रद्युम्न जी। और नाती है कौन?
अनिरुद्ध।
उसके प्रति भी रुक्मिणी जी का कुछ है। अपने भाई रुक्मी के प्रति भी कुछ न कुछ प्रीति है, किंतु गोपियों का ऐसा कहीं भी किसी का उल्लेख नहीं मिलता जो गोपियों का प्रेम कहीं भी विभक्त है, वो अविभक्त है। यहाँ तक कि कृष्ण की प्रीति भी विभक्त है, कोटि कोटि रूपों में विभक्त है, इसलिए न पा रहे हम वो उनकी प्रीति बहुत सह रहे हैं, बहुनिष्ठ है। और इनकी है आ सकता है गोपियां, कोई गृह कार्य में व्यस्त रहेंगी, कोई भी काम में व्यस्त व्यस्त कैसे रहेंगी? खड़ी करेंगी है, किंतु चित्त कहाँ है? गोविंद दाम करना, झाड़ू दे रही है किंतु चित्त है वहां, पोखल में कूद रही है चित्त वहां पर, कोई भी काम कर रही है, किसी के बच्चे को खिला रही है चित्त वहां पर, उनका चित्त भी भक्त ही नहीं है। अब ये बताया जो राष्ट्रोत्सव में गोपियों की के प्रति कृष्ण का जैसा प्रसाद हुआ और किसी को भी नहीं, किसी को कभी नहीं था, और उसके लिए भी ये श्लोक नारायण की जो उम्मीद ये सब दिखला है। अब उसी की पूर्ति के लिए और एक कह रहे हैं, इस रस में दो भाव है, आलंबन उद्दीपन। आलंबन दो प्रकार का, आश्रयावलंबन और विषयावलंबन। यहाँ पर आश्रयावलंबन को बताया और इसमें विषयावलंबन को लिए बताया। दोनों जब तक नहीं रहेगा तब तक रस नहीं होगी, रस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर गोपियों की महत्ता दिखलाई। इसमें दोनों है, दोनों होने पर भी प्रधानता दिखला दिया आश्रय का। कृष्ण उनके गले में हाथ डाल करके और इनसे कुछ प्रत्याशा की गोपियों से, जैसे प्रसाद के लिए कल बतलाया था राधा कुंड में और सब बहुत जगह ऐसा मिलता है। अब यहां पर दोनों यदि नहीं होगा तो हम लोग समझ ही नहीं सकते। एक बात और है, यहाँ के लोग रोटी खाते हैं, यहाँ के लोगों को चावल दिया जाए ना दो बेला लेंगे वो नहीं,
वो भात लेने को ले सकते।
बंगाल में बिना अन्न के लोग जीवित नहीं, वो यहाँ आने पर भी यदि ताजा नहीं मिला तो चावल को रात में बना करके पानी में भिजा करके रख करके सवेरे उसमें उनको बड़ा आनंद और रस आता। अच्छा ऐसा और यहाँ के लोगों को आता नहीं,
रोटी खाने वालों में गरीब आदमी,
रोटी खाने वाला गरीब आदमी है, अमीर आदमी रोटी। अच्छा तो ऐसा क्यों है बतला? वहाँ वालों को चावल अच्छा लगता है, यहाँ वालों को रोटी अच्छी लगती है, क्यों? जलवायु में जैसे भी हो उनका अभ्यास हो गया है और उनकी रुचि ही ऐसी हो गई, इसलिए जिसकी जैसी रुचि है ऐसी चीज नहीं मिलने से उनमें रुचि है। शांत रस वाले मान लिया कि कृष्ण को इस रूप में ये देखेंगे कि नहीं, साक्षात मान 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 होता। शांत रस वाले के गले में यदि कृष्ण अपनी भुजाओं को डाल दिया, वो चाहेंगे कि नहीं, वो जल्दी से छुड़ा करके खाते, अरे कहां से आ गया, आप सब मानिए नहीं मानिए, क्योंकि उनमें वो आधार ही नहीं है रास्ता, नहीं समझेंगे। कृष्ण जितने भी सुंदर हों कंस के सामने जाने से क्या होगा, उसका क्रोध का पारा एकदम चढ़ जाएगा। उनका यह मधुर रूप के हृदय में उतरेगा ही नहीं, तो उसमें वो चीज नहीं है जिसमें आस्वादन का। हम लोग भी ये सब सुन रहे हैं, किसी को अच्छा लगता होगा किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, क्यों नहीं होगा, वो आधार नहीं। इसलिए ये पांचों रस अपने में जो है वो सब स्वतंत्र रूप में उस व्यक्ति के लिए वही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए शांत रस वालों के लिए शांत रस सबसे श्रेष्ठ है। सखरस दाक्षरस दाक्ष वालों के लिए सबसे वही श्रेष्ठ है, उसे बढ़कर के कुछ है ही नहीं। सखाओं के सामने यदि श्रृंगार रस का भाव आए ना तो हंस उड़ाएंगे कृष्ण की भी और उनकी भी। इसी तरह से सब रस में उनमें उपकरण एक ऐसा होता है जिसके लिए वो आस्वादन होता है या अच्छा और उसकी वो उपकरण होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं ये जो श्लोक श्रीमद् भागवत से दिया, तासाम आदि भूत सौरी मेहमान मुखाम गुजर सीतांबर भर सग्री सत्ता मनमत। ये राजपंख्या सुनाई जाती है। अच्छा यही रूप यदि यशोदा जी के सामने में प्रकट होता तो क्या होता, होता कि नहीं, खोलेगा नहीं, खोएगा नहीं। जब भी हो गया तो यशोदा जी को बात कर रहती है और कोई आई नहीं सकता, क्योंकि उससे आस्वादन करने का वो उपकरण जो होना चाहिए वो है। अब राजपंचाई में विशेष से ही अंतर्ध्यान, किसलिए अंतर्ध्यान, किसी को हुआ अहम का और किसी को हुआ मान, किसी को हुआ सौभाग्य का अभिमान सौभाग्य मत और किसी को हुआ मान, मान का प्रसादन करने के लिए और सौभाग्य मत को दूर कर समन कर। और भी इसके बहुत से कारण हो सकते, राधा जी की सर्वोत्तमता प्रकाशित करने के लिए भी हो सकता है, होगा कि नहीं।
राधा जी के
राधा जी की सर्वश्रेष्ठता दिखलाने के लिए ही कृष्ण वहां से अंतर, राधा जी सबसे। हम वहां पर कृष्ण का कृष्ण के अनुसार ध्यान में जाने पर विरह में कातर होकर कृष्ण और कभी बल में अंधकार में चलने लगे, गोपियों को यह सहन दे। पहले तो राधा जी से मिली, फिर राधा जी को साथ लेकर के यमुना के उपवन में तट पर गई और वहां सभी मिलकर के कृष्ण विरह में आतुर हो गए। और उसी समय में विरह में जब अत्यंत आतुर हो गई और कृष्ण से रहा नहीं गया, जैसे यशोदा जी के बंधन में यशोदा जी का परिश्रम देकर के प्रिपयासी सुशोबंधन है, इनका इनकी विरह आरती को देकर के उनसे रहा नहीं गया, साथ ही साथ कृपा शक्ति आविर्भूत होकर के उनको प्रवेश कर दिया और वो साथ ही साथ में प्रगट हो गए। तासाम आविर्भूत सौरी उनके बीच में सौरी कृष्णचंद्र जी मेहमान मुखाम हो गया, मेहमान अटक मुस्कुराते हुए पीताम्बर भर पीताम्बर को धारण कर सरगरी बनमाला को जो पहले गले से लेकर के पैरों तक लंबा मान और सब साथ मन मन सब इस प्रकार से वो इसका साधारण रूप से यही है कि सब गोपियों मंडल में ये आविर्भूत हो गए मुस्कुराते हुए और वनमाला और पीताम्बर के साथ में मनमत मनमत पुरुष। दो चीजें, एक तो यहाँ पर विषय का वर्णन, कृष्ण के विष मन जो सबसे सर्वोत्तम रूप है मनमत मनमत को भी मन के मत को मत साधारण उसमें मनमत को कहते हैं कामदेव, कामदेव का रूप नहीं, किंतु प्रत्येक प्राणी देव चेतन है, किसी भी योनि का शरीर हो उसके मन और इंद्रियों पर बैठ जाते हैं और उसके मन में बैठ करके कभी कभी तादात्म्य हो जाते हैं और ऐसा उत्तेजित करते हैं कि उस समय अपनी बुद्धि अपनी शक्ति कुछ भी काम नहीं करती, एकदम पागल एकदम बना देते। ये है मनमत माने काम, समस्त प्राणियों के अंदर यही सृष्टि का कारण है, मनमत ही कारण है। उस समय कोई भी संधारण यहां तक कि ब्रह्मा शंकर इत्यादि कंट्रोल नहीं करता, ये मनमत। ये है कौन, इनके मूल उद्गम है कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, वो किंतु अपराजित कामदेव हैं, उनके ये अंश और विकृत रूप है ये जगत के कामदेव विकृत रूप विकृत प्रतिफलन जिसको कहते हैं या अंश, ये अनर्थ के कारण है। किंतु वो जो कामदेव अपराजित काम है वो कृष्ण संबंधी काम को हृदय में उदित करते हैं, वो है अपराजित कामदेव। वो काम यदि हम लोगों के हृदय में उदित हो जाए थोड़ा सा उसका आभास भी हो जाए, ये जगत का जड़ीय काम जो है वो सब एकदम दूर हो जाए। जब तक वो उदित नहीं होता तब तक ये काम और संभावी है ये रहेगा, जितना साधन करो है हो सकता है कि और बढ़ जाए। वो उनका भी दो रूप है, मूल उनका मूल कौन है ये चतुर्विंश के अंतर्गत में प्रद्युम्न और समस्त चतुर्विंशों के ये मूल कारण बतलाए जाते हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी रति से मिले कहां पर
बांसुके
वो किंतु स्कूल कहानी दी गई है एक तरह से रूपक समझो, वो चीज रूपक स्कूल भाव है, भीतर में वो चीज को जाकर के समझने की चेष्टा करनी चाहिए, रूपक के रूप में समझने से नहीं, स्कूल व्यक्ति केवल रूपक समझ करके स्कूल व्यक्तियों में और ज्ञान पुरुष जो है गुरु परंपरा से उस तथ्य के भीतर में प्रवेश करने की चेष्टा। ये कामदेव का जन्म हुआ कृष्ण से, होने पर भी ये कृष्ण जो है द्वारका वाले उनसे जन्म होता है गुरु कामदेव का नहीं, क्योंकि ये कृष्ण भी ये कृष्ण का भी मूल है कौन
ब्रजेंद्र,
वो अपराधिक समस्त काम जो उनके भी मनमत को भी मन को भी मथन करने वालों का भी मनमत, इनका इनके में कितना प्रकार के आकर्षण है ये उज्ज्वल दिन मनीष क्या है, न्याय कितने प्रकार के होते हैं, समस्त न्याय जगत में एक गुण रहेगा एक प्रकार का होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, हम छियानवे प्रकार के बतलाए गए न्याय, एक तो पूर्ण पूर्णतः पूर्ण ब्रज में पूर्णतः मथुरा में पूर्णतः और द्वारका में पति और उपपति के भाव से ये दो और तो किंतु और धीर ललित धीर शांत भक्त ये चार प्रकार के तो छौ का चौबीस चौबीस हुआ ना और चौबीस के बाद में थी छौ क्या विश्व
फल और खंड
और दो और अनुकूल अनुकूल दक्षिण ये चार चौबीस चौका जगत में नायक दो प्रकार का एक में नहीं है तो ये सब किंतु कृष्ण में विरुद्ध गुणों का सामंजस्य में से एक ही में सब जैसे धीर है अनुकूल है अनुकूल कभी भी सख्त नहीं होगा कभी भी नहीं होगा किंतु कृष्ण में दोनों सख्त किसको कहते हैं और भिष्ट किसको भिष्ट माने प्रत्यक्ष रूप में लक्षित माने पर भी बोलती हूँ और कहता है जैन नहीं यह है वो चोटी चोरी में जो पूछता सामने अगल बगल में खूब साधु और पीछे से तो ये सब कृष्ण ने अद्भुत रूप से सबने विदग्धता के वजह से ये सब कुछ समझ इसका वर्णन उज्जवल नीलमणि ने जब भजन करते 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 जब उस स्थिति में हम पहुंचेंगे सब कुछ समझ सकते हैं पढ़ने से भी नहीं होगा भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं कि पढ़ने के साथ में भजन करना पड़ेगा वैसी रीति और लोग होगा तीन रात उसमें तन में रहेगा तब स्वरूप शक्ति की कृपा से ये चीजें जो है स्थिति में सब थोड़ा थोड़ा समझ नहीं तो समझ में नहीं आएगा रुचि नहीं होगी ये तो बतला मुझे और वैसे ही गोपियों में वहां पर भी होकर के 300 कितना था
360
प्रकार की नायिका सब उसमें वर्णन किया ये सब गोपियों में संपूर्ण रूप से ये चीजें सभी चीजें नीचे वाली सभी चीजें उन्नत चीज में होती है ऐसे ये सब चीजें ये सब का अच्छी तरह से नहीं समझने से हम लोग इसको समझ ही नहीं सकेंगे ना रहता था अब यहां पर कृष्णचंद्र जी यहां इसी श्लोक में दिखलाया गया कि गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है और कृष्ण अपना सबसे सुंदर जो रूप है मनोहारी आकर्षक सब विषय में श्रेष्ठ रूप वो दिखलाते हैं केवल मात्र गोपियों को ही और किसी को नहीं एक बार थोड़ी सी झलक सप्तभामा रुक्मणी और ये को दिखला दिया तो वो सभी लोग पागल हो गए यहाँ पर कह रहे हैं पापमाम आदि भूत सौरी कल बतलाया था ना सौरी कहने का ये तात्पर्य सुखदेव जी गोपियों के पक्ष में हो और पक्ष में होने से कुछ कृष्ण पर उनका भी क्रोध कुछ आ गया क्रोधन में उनको हो गया सौरी कौन है सूरसेन के सूरसेन के वसुदेव हैं और सूरसेन के पिता का नाम अजामिल अजामिल के दो संतान सूरसेन और परजन्य के नंद महाराज और उनके हुए वसुदेव महाराज सूरसेन और सूरसेन से वसुदेव जी वसुदेव के कृष्ण इधर और उधर नंद के कृष्ण दोनों मिलकर के एक से एक तो यहाँ पर सूर कहते हैं सूर थे मैंने सेन वंशी है जादव वंशी सजा बहुत कड़ा कठोर होता है वो युद्ध में लोगों को जीत कर बड़े प्रसन्न होते हैं यदि किसी को पराजित कर दिया, शत्रु पराजित हो गया, उसमें बड़ी वीरता मांगते हैं। कृष्ण जी गोपियों को यहां पर जीत लिए ऐसा समझ करके बड़े प्रसन्न हुए। आज इनको खूब अच्छी तरह से रुला दिया और गर्दन इनको घुमा दिया और फिर हमने ये सड़क कर दी, इसको देख करके इनको बड़ी प्रसन्नता है। इसलिए मानो वो बड़े प्रसन्न होकर के वहां पर उदित है ना, मैं मान लू खान बच फंसते हुए किस लिए हमारी विजय हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी को ये नहीं खाया, आप बड़े प्रसन्न है, आप निश्चित में सूचन के ही पंथ से प्रवर्त हैं, आपने अभी भी शक्ति भाव, आपने सरलता माधुरता ये सब कुछ नहीं, इसीलिए आज हंसते हुए आप प्रकट हो रहे हैं। हमारी जीत हो गई, गोपियों को हमने उजा दिया और वो पराजित हो गए, जो पराजित होता है वही रोता है किसी, इसलिए कठोर होने के नाते उनको सूचन की हंसते हुए किस लिए आए। पहला तो ये कि हमारी विजय, और दूसरी भावना इसलिए कि कुछ लजाते हुए मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए लजाए। मैंने तुम लोगों को बहुत कष्ट दिया ऐसा तुम लोग समझ रहे, इसलिए इसमें पीतांबर धर्म, पीतांबर धर्म है क्या, पीतांबर धर्म इसकी क्या विशेषता है, पीतांबर धर्म एक तो सौंदर्य और दूसरा हुआ पीतांबर को ऐसे लंबा कर और ऐसे पकड़ लिया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए गले में कपड़े लपेट कर बल नहीं तो ऐसे कर दिए होंगे और ऐसे कर रहे हैं, इसलिए पीतांबर था। सुरागनी का तात्पर्य स्वर्ग को जैसे माला को धारण करते हैं, पीतांबर को भी ऐसे धारण करके हाथ धो करके कुछ लजाते मुस्कुराते हुए उसमें कृष्ण का सौंदर्य और भी बढ़ गया। सुरागनी माला किस लिए, देखो मैं कहीं नहीं गया, झूठ मुझको तुम लोग, अरे मेरी माला वही है जो तुम लोगों ने पहनाई, हमारी प्रिया जी ने जो हमको माला पहनाई वही माला, माला तो मैंने बदले देख लो, इसलिए माला तुम कुछ नहीं करते। साक्षात मनमत, साक्षात मनमत मैंने ये इस मनमत की तो कोई बात ही नहीं, कामदेव मनमत हुए और उनके मूल अंशी हुए कौन, द्वारका जी, और उनके भी मूल कौन है, अपने रूप को देकर के अपने भी आकर्षित हो जाते हैं। ये मनमत सत्ता मनमत मनमता मैंने अपने रूप को देकर के भी वो राधिके व राधिका की भांति अपने ही सौंदर्य को रसास्वादन करने की तीव्र लालसा उनके हृदय में चली जाए, इसलिए सत्ता। राधिकेव का तात्पर्य क्या, राधिकेव राधिका की भांति ही राधिका जी कृष्ण को जैसे देखती हैं ऐसे अपने रूप को देख करके उनके भी अंदर में भावना हो जाती है, जब मैं भी स्त्री होकर के कामनी होकर के इस रूप को अर्पण, इसलिए राधा जी का भाव लेकर के पश्चात चैतन्य महापुरुष के अवतार में उन्होंने जब तक हृदय में ऐसा ऐसी आरती नहीं होगी, आरती किसको कहते हैं, दैन्य, दैन्य और प्रेम दोनों पर्यायवाची शब्द पतला है, प्रियत भगवता में पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं,
समान
समान, यदि प्रेम नहीं होगा तो कभी भी स्वाभाविक दैन्य या आरती नहीं आ सकती, और यदि स्वाभाविक दैन्य नहीं है
तो कभी प्रेम नहीं हो सकता। बिना प्रेम के दैन्य नहीं और बिना दैन्य के दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। जितना ही दैन्य होगा प्रेम भी उतना ही होगा, और जितना अधिक प्रेम होगा उतना आरती और दैन्य भी होगा। राधा जी की जो आरती और दीनता है वो स्वाभाविक है, भक्तों की जो दीनता और आरती होती है वो स्वाभाविक होती है। हम लोगों में आरती और जो दैन्य होता है ना, ये स्वाभाविक नहीं होता है। क्या होता है? चाहते हैं जो दिखावटी न हो, स्वाभाविक आ जाए, किंतु होती नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेम का आभास भी कुछ है तो दैन्य का आभास भी कुछ है। जब कृष्ण ने उनकी इस प्रकार से स्वाभाविक विपुल आरती और दैन्य देखा तो कृष्ण भी बिना दैन्य और आरती के भगवान नहीं मिलते हैं। इस श्लोक में यही दिखता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी कहा। इसलिए ये दैन्य कैसे आए,
कौन से श्लोक में देखा
था? इस श्लोक
में
समय में जो गोपियों के सामने जो प्रकट हुए वो गोपियों की आरती को देख करके कृष्ण की द्रवित होकर घबरा नहीं सके। और साथ ही साथ में हम लोगों को भी दया आती है किसी के दैन्य को देख कर, किसी से शुद्ध रूप से हरि कथा हम कहेंगे। इसलिए कहते हैं सबसे क्यों नहीं कह देते, उसमें दैन्य नहीं, क्यों नहीं करेंगे? मैं आपका शिष्य हूं, वही अकेले शिष्य हैं, भाई वहां पर नहीं चलेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप में जब दैन्य होगा तभी ये हो सकता है। जिसके अंदर में जितना दैन्य है गुरु जी के वचनों को या गुरुओं के वचनों को भी सुधारित करने की क्षमता रही होगी और चीज को समझ लेगा, और जहां दैन्य नहीं है वहां पर जरूरी नहीं है। यहां तक ही ममता भी दैन्य नहीं रहने पर नहीं रहती। ममता कहां आई? दैन्य से तो ममत्व आएगा, इसलिए सब चीजों का मूल है दैन्य। इसलिए छिनादपी सुनी के नकार, छिनादपी सुनी भाव नहीं आएगा, दंभ किसी प्रकार से भी रहेगा, अहंकार रहेगा अपनी विद्या का, धन का, रूप का, किसी भी चीज का। इसलिए प्रेम आते ही सबसे पहले हृदय को द्रवित और आरती युक्त कर देता है। इसे जिसके अंदर में जितना ही अधिक दैन्य होगा भगवान की इन सब चीजों को भी जो ग्रहण करेगा भगवान भी उसके उसके अधिक अधिक से अधिक चीज।
केवल श्रोता के अंदर में या भक्ता के अंदर में भी कुछ होता है? केवल श्रोता के अंदर में दैन्य होना चाहिए या भक्ता के अंदर में भी कुछ होता है?
भक्ता में अधिक
बात का
प्रयोग
केवल जा सकता है कि कोई यदि सुनने को इच्छुक है, अभिलाषी है,
नहीं कोई वक्ता अपने लिए भी कह सकता है, ये श्रोता नहीं समझ में सुनने के लिए। सुखदेव गोस्वामी का जो दंड है उस दंड को शिष्य लोग नहीं भी सकता। जितना ही अधिक अनुभव युक्त आदमी होगा और वक्ता होगा उसके अंदर में नहीं होगा, नहीं तो उन चीजों को समझ, नहीं तो वो तटस्थ है। तटस्थ होकर के जैसे सनक्षनंदन सनक कुमारी कहते, बिना तटस्थ के ये सब कहा ही नहीं जाए। तटस्थ होकर के ही कोई कह सकता है, अन्यथा नहीं कर, उस भाव में एकदम डूब जाएगा वो वक्ता नहीं कर। इसलिए वहां पर वक्ता और श्रोता दोनों साधक हैं ये समझ। यदि वक्ता ने समझ लिया कि मैं साधक नहीं हूं तो वो वक्ता ही नहीं। जब समझा जब दूसरों से शिक्षा देने के लिए हम सबसे बेहतर सुनेगा सुनेगा ही नहीं,
तो उसमें तो ये सांसारिक स्थिति और सांसारिक भावना आ जाती है कि
उसी लिए पहले बतलाया कि जिसमें जीत की पोटेंशियल होती है वैसे ही
यदि गुरु मुक्त गुरु हो मैंने ऐसे वक्त
उनको किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किंतु भागवत में लिखा गया क्यों उपेक्षा करें, गुरु होकर के किसी की उपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि क्यों नहीं, एक के साथ प्रेममयी सख्त भाव से गुरु कहेंगे व्यवहार और एक को करेंगे
प्रेममय कृपा अपेक्षा
कृपा करेंगे एक और अपने प्रति प्रेममय व्यवहार कर रहे हैं ऐसा। ये क्यों लक्षित हो रहे हैं चार प्रकार से, उनके ये वक्ता का दोष है सबके साथ ही एक ही भाव सख्त भाव से सबके ऊपर में कृपा करें
एवं मध्यम अधिकारी के लक्षण में
इसलिए वक्ता उत्तम अधिकारी होगा तो वैसा होगा मध्यम
व्यवहारिक स्थिति में ये बात है किंतु उन्नत अधिकार में जाकर के ये बात नहीं,
उन्नत अधिकार में किसी से बोलेगा विशेष विशेष व्यक्तियों
विदेशी है तो
चैतन्य महाप्रभु ऐसे पार्शियल पक्षधारी पक्षपात करने वाले बस तीन आदमी को लेकर के तथा दो आदमी पाता और किसी को वहां पर आने नहीं देते। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण
भेदभाव
भेदभाव कटु हो गया क्योंकि महाप्रभु ने उनको बैठने नहीं दिया किसी को आने नहीं दिया
दूसरे प्रसंग उत्तम
कोई आएगा ही नहीं
सबके स्वभाव में सबके सामने कहा सुखदेव संग उत्तम भागवत सबके सामने स्वभाव में कहा केवल परिचित वाले को केवल नहीं सुनाया
नहीं संक्रमण कैसे करा आके आगे भजन करके चलो सब अभी इतना ही संभव एक ही बात को एक जन एक सभा में मैंने एक बात की किंतु एक बात को ऐसे ढंग से कहा जो विभिन्न प्रकार का तोता अपने अपने अनुसार जैसे एक जगह कहीं देखा भी कल पर कुछ दिन हुआ देखा शाम हो गई अब इसको ब्राह्मण जो थे ब्रज वाले शाम हो गई माने क्या अब हम लोगों को संध्या करने का मैया ने सुना ये शाम हो गई अब हमारा बेटा गोपियां ने सुना वो क्या 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 सुने शाम हो गई मैंने एक ही बात झिझोरा बज रहा है ब्रज शाम हो गई दूसरा तक अब देखो ये कैसे कैसे अधिकारी लोग कैसे कैसे ठीक वैसे ही है कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुत विधो है कृष्ण प्राप्ति सार्थक में बहुत आया कृष्ण प्राप्ति के बहुत से बहुत एक दो में ये सब मैंने कहा कहां से वर्णाश्रम आचार्यता से लेकर के और अभी तक गोपी भाव तक ले आए यहां पर स्पेशल गोपी का कोई विचार नहीं सब साधारण गोपियों के लिए यहां तक बतलाया कि कृष्ण प्राप्ति के वर्णाश्रम भी उपाय है कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा भक्ति भी औपाधिक भक्ति भी ये जथान गीता का क्या है मनुष्या पात्र स्वागत इसमें है ये जथान नाम प्रपजनते ताम प्रसल भजान नाम मम वर्तमान वर्तन से मनुष्या पात्र सर्व इसका अर्थ क्या है
क्या मेरे बारे का अनुसरण करने वाले
जितने भी मनुष्य हैं ये सब मेरे पद का
अनुसरण करते हैं
कैसे मनुष्य पात्र सर्वपर सभी लोग हमारे मार्ग को ही हमारे पाने के मार्ग पर ही सब अवस्थित कैसे कंस कैसे अवस्थित विषय लोग कैसे अवस्थित है कि नहीं है कुछ न कुछ में सभी लोग यहां तक कि पाश्चात्य देश वाले लोग जो अत्यंत भोगी हैं वो लोग भी वे लोग जो हमको पाने के लिए जो कुछ भी करते हैं उनका जथा योग्य में जैसा जो हमारे प्रति भजन करता है मैं वही वैसे प्रकार से उनको प्राप्त होता हूं अथवा उनके इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूं इसलिए किंतु हैं सभी
किंतु यह समझना बड़ा भारी कठिन है, ये समस्त मनुष्य ही भगवान के मार्ग पर ही अवस्थित हैं, इसको समझ लेना बड़ा भारी कठिन है। कुछ कुछ उत्तम महापुरुष लोग कुछ कुछ समझ सकते हम लोगों के लिए समझ, नहीं तो हमारा किसी से विरोध नहीं होता। किंतु उसमें तारतम्य है सभी तारतम्य उनमें। एक वर्णाश्रम का मुखा पालन करने वाला उसमें आसक्त रख करके उसमें धर्म अर्थ काम चाहता है और उसमें भगवत उपासना फिर करता है नारायण की सालक राम की ये सब और उसी को समझता है। और एक नाम उपचार पूजन आर्थ बंध वो उस प्रकार से प्रेम के सहित भगवान की उपासना है, दोनों में बहुत तारतम्य है। ऐसे इन सब में जितने अभी तक बतला गया है कृष्ण मिलते हैं सब में, किंतु इसमें तारतम्य है। कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आज है, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हुआ सर्वग्राम इत्यादि शिलाओं को पालन कर पूजा अर्चन इत्यादि वो धर्म अर्थ और काम। अधिकांश लोग काम के लिए करते हैं, काम माने अभिलाषा की पूर्ति के लिए संसारी, उसी के लिए धर्म करते हैं, धर्म के द्वारा फिर अर्थ प्राप्त करते हैं, फिर अर्थ से ये ऐसे घूमते रहते हैं। उसी तरह से उसके ऊपर वाले धीरे 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 चल रहे हैं।